फिर इसमें एक और अहम बात है कि ये जो आयत नंबर 283 में है कि अगर तुम सफर की हालत में हो और दस्तावेज लिखने के लिए कोई कातिब ना मिले तो रहन बिल कब्ज पर मामला कर लो। इसके जो है वो ये मानी है कि अगर कोई शख्स जो है वो सफर में है और सफर में ज्यादातर ये सूरत जो है वो पेश आती है कि उस वक्त जो है वो लिखत पढ़त नहीं हो सकती, तो उस वक्त जो है कोई चीज जो है उसके पास दूसरे के पास जिसे कर्ज लेना है रहन रखकर जो है फिर वो उसे पैसे या जरूरत की चीज जो है उसे ली जा सकती है। तो रहन बिल कर्ज का असल में मकसद क्या है कि कर्ज देने वाले को अपने कर्ज की वापसी का इत्मीनान हो जाए, तो इसलिए जो है कहा कि रहन बिल कर्ज जो है यानी कोई चीज जैसे जेवर है, कपड़ा है, गाड़ी है, कोई भी ऐसी कीमती चीज उसके पास रखकर जो है फिर कर्ज जो है वो लिया जा सकता है। तो फरहानुन मकबूदा, तो रहन रहा नून जो है रहन, और इसके मानी है कि जो कर्ज लेने वाला है तो वो कोई चीज लेकर जो है वो दूसरे के पास जो है ना रहन रखेगा। और आपको पता ही है ये लफ्ज जो है आप रोजमर्रा जिंदगी में आपने हो सकता है सुना भी होगा कि फलां ने फलां के पास ये चीज जो है वो रहन रखी हुई है, जैसे चीज रखकर उससे जो है फिर पैसे लिए और जब वो पैसे वापस करेगा तो उसकी वो चीज वापस कर देगा और मकबूदा उसके कब्जे में। फाइन आमिना बादुकुम बादन, और फिर अगर तुम में से कोई किसी पर जो है वो भरोसा करे, अमीना भरोसा करे, फल युअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहू, तो फिर अब क्या करना चाहिए, फल युअद्दी तो चाहिए कि वो अदा करे, अल्लज़ी वो शख्स, वो तुमिना जिसे अमीन बनाया गया, अमानतहू उसकी इमानत। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है फरमा रहे हैं कि ईमानदार को चाहिए कि साहिबे ईमानत की ईमानत अदा कर दे। फाइन अमीना, बस अगर जो है वो अमीन समझे बादुकुम बादन बाज तुम में से बाज को। अच्छा कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई शख्स ये कहता है कि मैं आपसे कुछ भी रहन नहीं लेता, कोई चीज नहीं लेता, लेकिन आपको पैसे दे देता हूं। अब उसने क्या किया कि उसने बगैर रहन के कर्ज दे दिया, कोई चीज नहीं ली और कहा कि चलो ठीक है तुम सफर पे हो या वैसे मजबूरी है जो कुछ जी मैंने तुम्हें दे दी ये इतने पैसे इतनी देर के लिए कर्ज दे दिए। अब जिसने कर्ज लिया है ना उसकी ये जिम्मेदारी बनती है क्या करे कि फाइन अमेना बादुकुम बादन, कि अगर तुम में से किसी को जो है वो कर्ज दे दिया जाए यदि उसको भरोसा करके उसके साथ कोई मामला कर ले तो फल युअद्दिल्लज़ी, तो उसको चाहिए कि अदा करे, वो तो मीना अमानतहू, और ओ तमीना जो है अमीन जाना गया, इसका रूट हमजा मीम नून है कि जिसे अमीन बनाया गया है यानी उसको पैसे दिए गए हैं अमानत हो, तो उस इमानत का अमीन जो पैसों का तो उसको वो वापस करने चाहिए, चाहिए कि इमानत अदा करे, वलियत्तकिल्लाह रब्बा, और डरे अल्लाह अपने रब से, और उसे चाहिए कि अल्लाह अपने रब का जो है वो खौफ करे, तकवा इख्तियार करे। और असल चीज ये है कि नमाज पढ़ना आसान है, रोजे रखना भी बहुत आसान है, हज जकात उमरा और लंबे लंबे रुकू और सजदे, तहज्जुद की नमाज, तस्बीह के दानों पर दाने गिराते चले जाएं, बहुत जिक्र अजकार, ये सारी चीजें बड़ी आसान है। मामलात का पेपर बहुत अहम है और बहुत मुश्किल है, और अक्सर लोग जो है मामलात में बड़े खोटे होते हैं, बड़े खराब होते हैं और बड़े निकम्मे होते हैं कि कोई उस पर ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है, तो फिर वो जो एतमाद है ना उसको जो है वो ठेस पहुंचाते हैं। तो कहा वलियत्तकिल्लाह रब्बा, तो जिस पर भरोसा किया गया है उसे चाहिए कि इमानत अदा करे और अल्लाह अपने रब से डरे, वला तक्तुमुश शहादा, और गवाही ना छुपाओ, ममई यकतुमहा, और जो इसे छुपाएगा, काफ तामीम कतामा का मतलब होता है छुपाना, और जो गवाही छुपाता है, फइन्नहु आसिमुन कल्बुह, तो उसका जो दिल है कल्ब है वो गुनागार है। हमजा सामीम जो है ये लफ्ज इस्तेमाल होता है गुनाह के लिए, और अरबी जबान में ऐसी ऊंटनी जो तेज चल सकती हो और जानबूझकर आहिस्ता चले, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि आसिमु नाका। अब आप देखें कि जो है वो अरब लोग क्या करते थे, बदू लोग, और उनकी जिंदगी का इन्हिसार जो था ऊंटों पर था, ऊंट ऊंटनी जानवरों पे। अब सफर में वो रहते थे बदुआना जिंदगी में, अब सफर में ऊंटनी चलेगी, ऊंट चलेगा तो सफर तय होगा ना। अब ऊंटनी तेज चल सकती है, अब जानबूझ के तेज ही नहीं चलती, तो क्या है ये गुनाह है ना, तो वो गलती कर रही है, ज्यादती कर रही है ना। तो इस तरह ये लफ्ज उधार लेकर आम गुनाह के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा कि फइन्नहु आसिमुन कल्बो, तो जो शख्स गवाही जो है उसको छुपाएगा तो उसका दिल जो है वो गुनागार है। वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, पर अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है कि जो कुछ तुम करते हो तुम्हारा दिल जो है वो किस तरह से गवाही को जो है वो छुपाता है, तुम्हारा दिल जो है वो किस तरह ज्याती करता है। अल्लाह जो है ना तुम्हारे इस मामले को खूब जानता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे दिल का जिक्र खास तौर पे क्यों किया गया कि जो शख्स गवाही छुपाएगा इसका दिल जो है वो गुनाहगार है। इस सिलसिले में आप ये बात याद रखें कि बाज गुनाह जो हैं ऐसे होते हैं कि जिसका असर इंसान के महज जाहिरी अज़ा तक महदूद होता है, जैसे उनकी हैसियत जो है ना जैसे गर्दो गुबार की होती है, ओपरे ओपरे होते हैं, जैसे बाज लोग ऐसे ही बगैर सोचे कस्में खाने की उनको आदत होती है, तो छोटे मोटे ऐसे ही बगैर सोचे वो गुनाह करते चले जाते हैं। तो अब अगर वो अपनी थोड़ी सी भी इसलाह करते हैं ना तो वो उनके गुनाह जो है वो झड़ सकते हैं, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे होते हैं कि जो पूरी दिल के शऊर के साथ जिसकी तहरीक दिल की गहराइयों से उठती हैं, तो ऐसे गुनाह के असरात जो है बहुत खतरनाक होते हैं। और ये जो होते हैं ऐसे गुनाह जो पूरे शऊर के साथ और दिल की गहराई के साथ पूरी प्लानिंग के साथ किए जाते हैं, तो ये दिल की खराबी की और उसके फसाद की गमाजी करते हैं। अगर इसमें एहतियात ना की जाए और इसकी फौरन इसलाह की कोशिश ना की जाए तो ये बीमारी जो है ना ये बढ़ सकती है। और आप ये बात याद रखें कि अगर किसी से दिल ही खराब हो गया, अब दिल में जो है किसी के लिए मैल आ गया है, बाल आ गया है, अब क्या है कि आपके चेहरे से भी उसके असरात नजर आने लगेंगे, आपकी आंखों में आंखें भी बदली बदली होंगी, और फिर क्या है कि आप उसे देख रही हैं आप स्माइल नहीं कर रही, आप उसे देख रही हैं आप सलाम नहीं कर रही, आप उसे देख रही हैं लेकिन दिल में चूंकि मैल आ गया आप उसे बात ही नहीं करना चाह रही। तो यहां पे दिल को खास तौर पे फोकस किया गया है कि फइन्नहु आसिमुन कल्बो, तो उसका दिल जो है वो गुनाह में आलूदा है, उसका दिल जो है ये गुनाह में मुब्तिला है। और इस सिलसिले में हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस भी मिलती हैं जिनसे जो है वो दिल की जो खास कैफियत है उसका जिक्र मिलता है कि जो गुनाह छुपाए जाते हैं तो उनका सुदूर दिल से होता है, क्योंकि दिल तमाम अज़ा का सरदार है, और ये गोश्त का छोटा सा टुकड़ा अगर ये सही रहे तो सारा जिस्म सही रहता है, और अगर इसमें फसाद आ जाए तो सारा जिस्म फसाद का शिकार हो जाता है। तो इस सिलसिले में जो है वो दिल जो है दिल की खास तौर पर जो है इसका जिक्र किया गया। और आप ये बात भी याद रखें कि गवाही छुपाना गुनाहे कबीरा है, और इस पर जो है वो सख्त जो है वो सजा जो है वो बताई गई है कि जो शख्स जो है गवाही छुपाएगा तो वो सख्त गुनाहगार है। फिर इसी तरह आप देखें कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान जो है वो एक गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा लग जाता है, और जब वो नेकी करता है तो वो जो स्याह निशान लगा था वो हट जाता है, धुल जाता है, और अगर वो और गुनाह करता है और करता चला जाता है तो जो धब्बे हैं छोटे छोटे निशान हैं ये बढ़ते चले जाते हैं, हत्ता के पूरा दिल जो है वो स्याह हो जाता है। अब वो गुनाह करता है तो उसको जो है वो खौफ कोई नहीं आता, और अगर वो नेकी करता है तो उसको खुशी कोई नहीं होती। तो यहाँ पे जो बात बताई जा रही है कि वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह तुम्हारे अमाल से जो है वो खबरदार है। तअमलूना, तुम जो अमल करते हो कि दिल क्या कर रहा है और तुम्हारे जाहिरी जिस्म के अज़ा क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी तुम्हारा मामला है अल्लाह उसको जो है वो खूब जानता है। तो आइए अपने दिलों का जायजा लें, अपने अमाल का जायजा लें। सूरत अल बकरा इख्तिताम पर है, तो क्या पाया और क्या खोया? पूरी सूरत अल बकरा पढ़ने के बाद जो है जिंदगी में क्या इनकलाब आया, ईमान में कितना इजाफा हुआ, नमाजों में कितना खुशू पैदा हुआ, दुनिया की मोहब्बत कितनी दबी, आखिरत की मोहब्बत जो है वो कितनी जो है वो बढ़ी, जबान की कितनी हिफाजत करनी शुरू कर दी। क्या कभी जबान को पकड़कर खींचा भी? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह नो एक दफा अपनी जबान को पकड़कर खींच रहे थे और रो रहे थे, तो किसी ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा कि कयामत के दिन ये जबान ही तो होगी जो लोगों को हिलाकत के बल जो है वो जहन्नुम की गहराइयों में जो है वो डालेगी। तो सहाबा का कभी जबान को पकड़कर जो है वो खींचना, और कभी ये कहना कि अबू बकर तो मुनाफिक हो गया, हंजला तो मुनाफिक हो गया, और कभी उमर फारूक रजी अल्लाह का बैठ कर रोना कि काश कि मैं जो है एक परिंदा होता कि जिसे जो है वो जिबा कर दिया जाता और उसका हिसाब ना लिया जाता। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह का बैठ कर जो है वो अपना मुहासबा करना कि काश मैं एक दरख्त होता जिसे काट दिया जाता और उसका हिसाब ना लिया जाता। तो आप सोचें कि पूरी सूरत अल बकरा अल्लाह का कलाम, अल्लाह की आयात, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह की बशारतें, उसके डरावे, कितने दिन हो गए इनको पढ़ते हुए, इनको सुनते हुए, क्या खोया क्या पाया, ये है असल बात। क्योंकि आज के इस जमाने में, आज के इस दौर में इल्म बहुत है, इल्म बहुत है, लेकिन जिस चीज की कमी है वो है अमल। और इल्म किताबों, तफासीर, कैसेट, सीडी, आप सोचें कि कितना ज्यादा प्रोग्राम है जो हर तरफ हो रहे हैं, किताबें हैं, हर जगह से इल्म जो है वो मिल सकता है, लेकिन असल बात क्या है? वल्लाहु बिमा तअमलूना अलीम, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। आपने कितने लोगों को माफ कर दिया, आप कितने लोगों से नाराज थी, आपने उनको मनाने की कोशिश की, यानी आप नाराज थी आपने माफ कर दिया, आपसे कोई रूठा था आपने उसको मनाने की कोशिश की, और आपने अपने दिल को जो है ये सबक पढ़ाया कि बस अब जो है रेज करनी है बातें, दिलों के अंदर से मिटा देनी है, क्योंकि मुझे जन्नत चाहिए और मैं चाहती हूं कि मेरे जो प्यारे हैं वो भी मेरे साथ जो है वो जन्नत में जाएं। इसके बाद जो है आखिरी आयात है सूरत अल बकरा की, और इन आखिरी आयात में जो है वो वही मजमून जो है वो दोहराया गया है जो पूरी सूरत अल बकरा के अंदर था, और यहाँ पे जो है वो निचोड़ के तौर पर जो है वो हमारे सामने रखा गया है। इस सिलसिले में जो है आखिरी आयात के बारे में जो है वो इनकी फजीलत हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह फरमाते हैं, एक दिन जिब्रील अलैहि सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि उन्होंने अपने ऊपर एक जोरदार आवाज सुनी। उन्होंने अपना सर उठाया फिर फरमाया, यह आसमान का एक दरवाजा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। फिर फरमाया, ये एक फरिश्ता है जो आज से पहले जमीन पर कभी नाजिल नहीं हुआ। फिर इस फरिश्ते ने आपको सलाम किया और दो नूरों की खुशखबरी दी और कहा कि ये दो नूर आप ही को दिए जा रहे हैं, आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, एक सूरत फातिहा और दूसरा सूरत अल बकरा की आखिरी आयात। आप जब कभी इन दोनों से कोई कलमा तिलावत करेंगे तो आपकी तलब की गई चीज जरूर मिल जाएगी। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। तो मेरी प्यारी बहनों, सूरत फातिहा और सूरत अल बकरा की जो आखिरी आयात है, हमें इस हदीस से क्या पता चलता है कि इनका एक नाम जो है नूरैन भी है। दूसरी बात क्या पता चलती है कि सूरत फातिहा और सूरत अल बकरा की आखिरी आयात की तिलावत करके आप अल्लाह से जो सवाल करेंगी, आप अल्लाह से जो दुआएं मांगेंगी, आप जो इल्तजा करेंगी, आप अपनी जरूरियात, अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियां जो हैं, आप अपना दिल खोल कर अल्लाह के सामने रखेंगी, अल्लाह आपकी दुआएं जरूर कबूल करेगा। लेकिन यकीन होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो है वो गाफिल दिल की दुआ जो है उसको कबूल नहीं करता। फिर इन आयात के सिलसिले में एक और बड़ी खूबसूरत हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हो रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरत बकरा की आखिरी दो आयात रात को पढ़ लेता है तो ये इसको काफी हो जाती हैं। सुभान अल्लाह। इस हदीस को बुखारी ने रवायत किया है कि वो उसको जो है वो काफी हो जाते हैं। मानी क्या है कि ये दो आयात अगर वो पढ़ता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है। एक और हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात जो तीन चीजें मिली, मेराज पर जो तोहफे मिले, उनमें से एक सूरत बकरा की ये आखिरी दो आयात भी हैं। आप देखें कि अगर आप में से कोई पाकिस्तान जाता है हज या उमरा करने जाता है, और या इंडिया जाता है, आप किसी दूसरी जगह जाती हैं, तो अपने घर वालों के लिए कोई तोहफा लेकर आती है ना, एक सौगात। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, मेराज में अल्लाह से मुलाकात की, अल्लाह ने जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तोहफे दिए, और उनमें से जो है सूरत अल बकरा की आखिरी आयात जो है, ये आखिरी दो आयात आपको मेराज पर जो है वो दी गई। तीन चीजें मिली और उनमें से आखिरी ये दो आयात भी हैं। फिर इसी तरह एक और हदीस है जिसे मुसनद अहमद और निसाई, तिब्रानी, बहकी, हाकिम, दारमी वगैरह ने जो है वो रवायत किया है कि इस सूरत की आखिरी आयात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खजाने से अता की गई जो अर्शे इलाही के नीचे है, और ये आयात आपके सिवा किसी और नबी को नहीं दी गई। हजरत मुआज रजी अल्लाह अन्हो इस सूरत के खात्मे पर आमीन कहा करते थे कि ये आयात पढ़ते और फिर अल्लाह से दरख्वास्त करते कि ए अल्लाह तू कबूल कर ले। आइए इन आयात को समझते हैं, और ये आयत नंबर 284, जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबाए कराम बड़े परेशान हुए। अहदीस में आता है उन्होंने दरबारे रसालत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज, रोजा, जकात, जिहाद वगैरह, ये सारे अमाल जिनका हमें हुक्म दिया गया है हम बजा लाते हैं क्योंकि ये हमारी ताकत से बाहर नहीं है, लेकिन दिल से दिल में पैदा होने वाले ख्यालात और वसवसों का तो हम पर हमारा जो है उन पर इख्तियार नहीं है, और वो हमारी इंसानी ताकत से ही बाहर है, लेकिन अल्लाह ताला ने इन पर भी मुहासबे का ऐलान कर दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिलहाल तुम समेना व अपाना ही कहो। चुनाचे सहाबाए कराम ने जो है वो जज्बाए समातात जो था, उनका जज्बा कैसा था कि वो तो दिल की गहराइयों से कबूल किया करते थे और सरापाए अमल बन जाया करते। उन्होंने कहा, समेना व अपाना। आइए आयत नंबर 284 को समझते हैं। लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अन्फुसिकुम औ तुख्फू युहासिबकुम बिहिल्लाह فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير। एक आयत है और इसमें जो है वो तीन बड़ी बातें जो है वो बताई गई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तीन अहम सिफात का जिक्र किया गया है और पहली सिफत क्या? लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। काश के ये जो सिफत है ना, जो ये अल्लाह का तारुफ करवाया गया है, काश के मुझे और आपको इसकी समझ आ जाए। और क्या आयत के इतने हिस्से में अल्लाह की मिल्क, अल्लाह की बादशाहत और अल्लाह का जो इक्तदार है उसकी मंजरकशी की गई है। क्या फरमाया? लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है। ये दीन की अवलीन बुनियाद है कि अल्लाह ताला का मालिक जमीनों आसमान होना, अल्लाह ताला का मालिक जमीनों आसमान होना और इन तमाम चीजों का मालिक होना जो आसमान जमीन के अंदर हैं। अगर इंसान को ये हकीकत समझ में आ जाए कि सारी खुदाई अल्लाह की है, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, अगर ये हकीकत समझ में आ जाए तो हमारी सारे मसाइल जो है वो हल हो जाए। बाज़ुकात जो है वो औरतें इस बात पर जो है वो नाराज होती हैं कि जो है वो मुझे जो है वो ज्यादा हमें जो है वो मुझे हुसन क्यों नहीं मिला, या मुझे अल्लाह ने औरत ही क्यों बनाया, मर्द लड़का क्यों नहीं बनाया, या ये कि मुझे बेटियां ही क्यों दे दी, अल्लाह ने बेटा क्यों नहीं दिया। या बाज़ुकात मर्द भी नाराज होते हैं। कभी जो है वो औरत जो है उसको कहा जाता है कि ये मनहूस है कि इसकी वजह से घर में बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही हैं। और एक दफा एक औरत जो थी उसकी, वो खुद डॉक्टर थी और उसकी एक बेटी हुई, फिर दूसरी बेटी हुई, तो बहुत ही उदास थी कि उसकी सास ने यहां तक कह दिया है कि इसको तलाक दे दो कि इसको बेटियां क्यों हो रही है ना। और जब उसने क्लिनिक बनाया तो सास कहने लगी कि क्लिनिक का नाम जो है ना वो मेरे नाम पे रखा जाएगा, और उसी के नाम, उसकी सास के नाम पर जो है वो क्लिनिक का जो है वो नाम रखा गया। और उस वक्त मैं सोच रही थी कि देखिए ये औरत ही तो है, यानी औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है ना। ये एक तरफ अपनी हुकूमत और अपने हकूक को देखे और दूसरी तरफ वो औरत का तो उसमें कोई कसूर नहीं है अगर उसको जो है वो लड़की जो है वो बेटियां जो है पैदा हो रही हैं। और अब साइंस क्या कहती है कि ये जो है वो मर्द का नुतफा जब गालिब आता है तो इसलिए जो है वो फिर लड़की पैदा होती है। तो खैर, लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो तो ये क्या है, अल्लाह इसका मालिक है, अल्लाह की मर्जी है, ये अल्लाह के फैसले हैं। इसी तरह किसी का शौहर खूबसूरत है, किसी का नहीं है, किसी की बीवी खूबसूरत है, किसी की बीवी खूबसूरत नहीं है, और किसी का शौहर अमीर है और किसी का शौहर जो है वो अमीर नहीं है। या बाज़ुकात जो है वो दो बहनें ही आपस में जो है वो इस बात पे अफसुर्दा होती हैं कि एक कहती है कि मेरी किस्मत फूट गई, मेरे वालदैन ने मुझे क्या जो कहां जो है वो डबो दिया। बस ये तो नसीबों की बात है ना, वालदैन तो कभी भी अपनी औलाद के लिए जो है वो कमी नहीं चाहते ना, लेकिन जो है ये तकदीर के फैसलों को तो कोई रोक नहीं सकता ना। तो असल बात जिस पर जो है हम सबको यकीन करना चाहिए और वो क्या है कि इस कायनात में एक पत्ता नहीं हिल सकता, कोई सांस नहीं ले सकता, एक तिनका जो है इधर से उधर नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ना चाहे। और अल्लाह जो कुछ चाहता है जब उसके मुताबिक होता है तो फिर क्या करना चाहिए कि अल्लाह के आगे सरे अताज जो है वो झुका दिया जाए। और फिर ये कि सबसे बड़ी बात, खुदा ना खास्ता किसी के यहाँ डेथ हो जाती है। अभी चंद दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट जो है उसके भाई सोए, जवान थे, 30s में सोए और ऐसे ही जैसे खराटे से ले रहे हैं उसी में ब्रेन हेमरेज हुआ और फिर डेथ हो गई। छोटी छोटी दो बच्चियों को छोड़कर वो फौत हो गए। अब आप देखें, अब अल्लाह ने जब तक चाहा था उसको जिंदा रखा, जब चाहा उसको मौत दे दी, तो कोई उसको रोक नहीं सकता अल्लाह को। तो अल्लाह के फैसलों के आगे जो है वो सरे अतात खम कर देना। दूसरी बात जो पता चलती है, वाइन तुब दू माफी अनफुसिकुम औ तुखफूहु, और अगर तुम जाहिर करो जो तुम्हारे दिलों में है। तुब दू जो है बा दाल वाव इसका रूट है और इसके मानी होते हैं कि जाहिर करना। माफी अनफुसिकुम, नफ्स वाहिद है, अनफुस इसकी जमा है और यहां पे दिल के लिए आया है कि तुम्हारे दिल की जो बातें हैं, जो तुम्हारे दिल के अंदर है, कीना है, कदूरत है, नफरत है, हसद है, बदगुमानी है, और जो है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग है, या फिर शिर्क है, बिदतें हैं, नाफरमानियां हैं, जो कुछ भी तुम्हारे दिल के अंदर है, तुम खा इसको जो है वो जाहिर करो, और तुफू या तुम इसको छुपाओ। और ये भी हो सकता है कि दिल के अंदर नेकी के काम हो, इखलास है, दूसरों की मदद करने की प्लानिंग है। जैसे आज ही जो है वो एक औरत जो है वो आई घर और कहने लगी कि जो है वो दारुल ईमान के लिए जो है वो ये क्लास में जो मसला हो रहा है, और पेल्टॉप के भी, और इस तरह तो लैपटॉप चाहिए, तो मैं $350 जो है ये दे रही हूँ, लेकिन क्लास में मेरा किसी के सामने नाम नहीं लेना ना। तो मैं उसे कह रही थी कि अल्लाह ताला तुम्हारा जो है ये इन्फाक कबूल करे, लेकिन मैं उस औरत पे सोच रही थी कि अभी थोड़े दिन हुए इसको क्लास में आए और पढ़ रही है, और कैसा इसका जज्बा और शौक है कि किसी को बताए नहीं कि मैं ये अल्लाह के रास्ते में पैसे जो है वो दे रही हूँ। फिर इसी तरह आज जो ग्रेजुएशन के लिए मीटिंग हुई, उसमें माशाल्लाह 50-60-70 लोग जो आए, और इसमें उसमें एक बहन ने जो है वो अपना जेवर एक लिफाफे में डालकर, और कहने लगी कि लिफाफे में डालकर उसमें ये लिखा कि इसको अल्लाह के रास्ते में जहां मुनासिब समझे आप इस्तेमाल करें, बड़े बड़े झुमके भी, कांटे भी, और वो क्या कहते हैं नथ या वो जो टिक्का होता है, और इस तरह का जेवर डिबिया में। और फिर उसके बाद जो है मैं उसको देख रही थी, उसके चमकते हुए चेहरे को, उसके जज्बे को, उसकी शौक को, उसके इखलास को, और मैं सोच रही थी कि औरत तो जेवर से कितनी मोहब्बत करती है, और ये जेवर जो है वो लेकर जो है वो आई। तो मैंने कहा कि आपने घर में किसी से मशवरा भी किया? तो कहने लगी कि बाजी मेरा शौहर जो है ना वो बहुत खुश होता है जब मैं अल्लाह के रास्ते में देती हूँ, और मेरा शौहर जो है वो मेरे साथ है इस जेवर को अल्लाह के रास्ते में देने में। और फिर कहने लगी कि बाजी मैं ना ये वो लाई हूँ जो मेरे वालिदैन ने मुझे मेरी शादी पे दिया था, और मुझे ये बहुत पसंद था, और ये मैं अपना पसंदीदा जेवर जो है ना वो अल्लाह के रास्ते में जो है वो लाई हूँ, और बस किसी को पता ना चले कि ये मैंने दिया है। और मैंने उसको आज पहली दफा देखा, वो ऑनलाइन की स्टूडेंट थी, और मतलब मैं उसको पहचानती भी नहीं थी, और उसने वो दिया, और फिर वो मजमे के अंदर वो गुम भी हो गई। और मैं सोचती रही कि इस आज के दौर में भी सिद्दीक मौजूद हैं, उस्मान गनी मौजूद हैं, और ऐसे ही नेक लोगों से जो है ये दुनिया का निजाम जो है वो चल रहा है। तो बात ये है कि तुम अपने दिल की बातें खा जाहिर करो या छुपाओ, अच्छी है या बुरी। तो यहाँ पर जो है खास तौर पे जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि ऊपर गवाही को छुपाने की बात है, गुनाह करने की बात है, कि अगर तुम जो है वो गलत चीजें या गुनाह करके उनको छुपा लेते हो, तो अल्लाह से तो छुप नहीं सकते ना। युहासिबुकुम बिल्लाह, अल्लाह बहरहाल इनका हिसाब तुमसे लेगा, अल्लाह जरूर मुहासबा करेगा, अल्लाह जरूर पूछेगा। जब हशर में पूछा जाएगा था पास खजाना कुव्वत का, वो किस मकसद पे सरफ किया, उस वक्त कहोगी क्या बोलो, हर उजर को कांटे पर तोलो। फयग़फिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। तो दूसरी सिर्फ जो है फिर क्या पड़ी कि अल्लाह को हर चीज का इल्म है, तो मुझे और आपको भी अपने अमलों में मोहतात रहना चाहिए। ये इस बात से नहीं डरना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, कि लोगों को पता चल जाएगा, इस बात से डरना चाहिए कि मेरा रब सब कुछ जानता है, और जो है मैं 7 पर्दों के अंदर, मैं 10 दरवाजों के अंदर छुप कर भी अगर कोई गुनाह करती हूँ, लेकिन ये कि मैं अल्लाह से अपने आप को छुपा नहीं सकती। हजरत अली रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया कि जब गुनाह करने को तेरा दिल चाहे तो किसी ऐसी जगह चला जा जहां खुदा ना हो, तो ऐसी जगह तो कोई नहीं है। फिर एक मौके पर हजरत अली रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया कि गुनाह के छोटा होने को ना देख, बल्कि उस हस्ती की अजमत को देख जिसकी तू नाफरमानी करता है। तो तीसरी सिफत इस आयत में क्या पता चलती है कि यग़फिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, फिर उसे अख्तियार है जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे वो सजा दे दे, ये अल्लाह की मर्जी है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो अल्लाह की कुदरत का पता चलता है कि अल्लाह को, अल्लाह जो है वो मजबूर नहीं है बल्कि मालिक मुख्तार है, सजा देने और माफ करने के कुल्ली इख्तियारात उसके हाथ में हैं। अब यहाँ पर ये जो आयत है ना कि दिल के अंदर भी जो तुम्हारे ख्याल आएगा अल्लाह इससे पूछेगा, तो सहाबा जो है ये जब आयत नाजिल हुई तो वो रोने लगे, वो घुटनों के बल बैठ गए, वो बहुत परेशान हुए और कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां तक बात है नमाज, रोजा, जकात, जिहाद और अमाल करने की, वो तो हम करते हैं, लेकिन दिल के अंदर जो ख्यालात बुरे आ जाते हैं, वसवसे आ जाते हैं, जो दिल के अंदर ख्याल जो है वो आते हैं, वो तो हमारी ताकत से बाहर है ना, ख्याल आता है जाता है। अल्लाह ने ये कह दिया कि इस पर भी जो है मुहासबा होगा, इससे भी पूछा जाएगा, तो फिर हमारा जो है वो क्या बनेगा। तो ये जो आयत थी ना, इसको सहाबा ने, इस आयत को सुनकर सहाबा हिल गए। आप सोचिए, घुटनों के बल बैठकर जो थे ना, वो रोने लगे, परेशान हो गए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमारा जो है वो क्या बनेगा। तो अब आप देखिए कि अगली जो आयत है, इसमें ये तालीम दी गई। पहली बात, आमना रसूलु बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून। रसूल ईमान लाया। मेरी प्यारी बहनों, सबसे अहम बात वो ये कि रसूल जो रोल मॉडल है, तो रसूल का किरदार क्या है, कि रसूल जो है अल्लाह की किताब पर, अल्लाह के अहकामात पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में होता है। इस्लाम में कानून की जो फरमा बरदारी है और अतात है, इसमें पैगंबर का दर्जा सबसे ऊंचा है। दुनिया में आमतौर पे क्या होता है कि लोग कहते हैं लोग, लेकिन अमल नहीं करते, लेकिन रसूल क्या ऐलान करते हैं, अना अव्वलुल मोमिनीन, अना अव्वलुल मुस्लिमीन, फौरन सरापाए अमल। रसूल किस चीज पर ईमान लाया, बिमा उन्जिला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून, जो कुछ नाजिल किया गया उसकी तरफ, उसके रब की तरफ से, जो उस पर नाजिल किया गया उसके रब की तरफ से। तो इससे मुराद कुरान भी है, जैसे अल्लाह का कानून जो अल्लाह ने नाजिल किया, और दूसरी चीज जो है वो जैसे सुन्नत भी, वही है मतलू और गैर मतलू। मतलू वो जिसकी तिलावत की जाती है, और गैर मतलू जो उससे हटकर, क्योंकि कुरान पर अमल नहीं हो सकता, शरीयत मुकम्मल नहीं है जब तक के रसूल जो है उसके जरिए रहनुमाई ना मिले। तो अब यहां पर यह है कि उन सब चीजों पर वो ईमान लाता है, सरापे अतात बनता है। दूसरी बात, वल मोमिनून, और ईमान लाने वाले भी जो है ना, वो रसूल को फिर फॉलो करते हैं। वल मोमिनून हमारा कुरानी नाम क्या है, ईमान लाने वालियां, ईमान लाने वाले। तो वो क्या करते हैं, वो ईमान लाते हैं। किस तरह ईमान लाते हैं, कुल्लुन आमना, आमना बिल्लाही, सब जो है ईमान लाए अल्लाह पर। अब आप देखिए कि यहां पर जो है बताया जा रहा है कि सब जो है वो अल्लाह पर ईमान लाए, और ईमान लाने का मतलब क्या है, ईमान लाने का मतलब यह है कि अल्लाह के आगे फिर अपने आप को झुका देना, अल्लाह की जो अतात है इस पर सरे अतात खम कर देना। अल्लाह ने सूरत अल-फातिहा से लेकर अन्नास तक जितने अहकाम दिए हैं, उन सब पर जो है फिर ईमान लाना। अब ये नहीं हो सकता कि ये तो नारा लगाया जाए कि मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूं, और उसके बाद जो है फिर अमल जो है उससे हट कर किया जाए। तो असल बात क्या है कि वो लोग क्या करते हैं कि वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह को अपना सब कुछ बना लेते हैं। दूसरी चीज, वह मलाइकात ही और उसके फरिश्तों पर, और फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि जो अल्लाह के फरिश्ते हैं, जैसे किरामन कातिबीन, इनसे मोहतात रहना, और जो है ख्याल रखना कि वो सब कुछ लिख रहे हैं। जब अच्छा करते हैं तो लिखते हैं, बुरा करते हैं तो भी तो लिखेंगे ना। तो फिर क्या करते हैं कि गुनाहों से बचना, अपनी जबान की हिफाजत करना, अपनी जात को अल्लाह की बंदगी में देखना देना। अब आप देखें, आप गाड़ी चलाती हैं, आप में से कितने लोग ड्राइवर हैं, जरा बताएं कितने लोग ड्राइवर हैं। अब आप देखें कि गाड़ी चलाते हुए आपने गाड़ी के रूल्स रेगुलेशन सीखे ना, कि सीट बेल्ट लगानी है, और जो ही किसी पुलिस वाले को आप देखती हैं तो क्या करती हैं, आप पीछे भी मुंह मोड़े बगैर बच्चों से कहती हैं सीट बेल्ट लगाई है ना, सबने अपनी भी सीट बेल्ट को चेक करती हैं और देखती हैं मेरी स्पीड ठीक है, फिर शीशे से देखती हैं कि पुलिस वाला मुझे तो नहीं फॉलो कर रहा। तो असल बात क्या है कि दुनिया की पुलिस से तो डरते हैं, जैसे आपने गार्बेज फेंकना होता है, अब उसमें जो है रूल्स रेगुलेशन है कि पत्ते भी बाहर से उठाने हैं, और कागज और जो है वो कैन वगैरह अलग रखने हैं, दूसरा गार्बेज अलग रखना है, और अगर आप ठीक नहीं रखते तो क्या है कि आपको टिकट मिल जाता है। तो आप क्या करती हैं, आप फिर डरती हैं ना इस बात से। तो आप दुनिया के रूल्स रेगुलेशन पर क्यों अमल करती हैं? क्योंकि यहाँ की पुलिस से डरती हैं। अभी पिछले दिनों एक मेरी दोस्त थी और कहती हैं कि रात का वक्त था, हमने 12 बज चुके थे, तो रेड लाइट जो थी ना बस क्रॉस कर ली, और कहती हैं हमारे घर जो है टिकट आ गया, क्योंकि कैमरा लगा था और घर टिकट आ गया। अब मुझे आप बताएं कि कैमरे के डर से, पुलिस के डर से तो हम ठीक हो जाएं, और किरामन कातिबीन जो हमारे साथ लगे हुए हैं, तो क्या हमें उनसे मोहतात नहीं होना चाहिए? और वन्ना जियाती गर्का वन्ना शितौती नश्ता, तो कुछ लोगों की जान जो है फरिश्ते डूब कर खींच कर निकालते हैं, जो अल्लाह के गुनाहगार बंदे हैं, क्या उनसे नहीं डरना चाहिए? वो फरिश्ते जो कब्र में मुनकर नकीर बनकर आएंगे, क्या उनके सवालों की तैयारी नहीं करनी चाहिए? वो फरिश्ते जो नामाए आमाल पकड़कर और कब्र से जब इंसान उठेगा उसको पकड़कर हशर के मैदान की तरफ उनको हांकेंगे, क्या उनसे नहीं डरना चाहिए? तो इसी तरह वजा रब्बू का वल मलाकु सफन सफा, तो यहाँ पे क्या है कि वह मलाइकाते ही और फरिश्ते जो हैं उन पर भी ईमान लाना चाहिए, वह कुतुब ही और उसकी किताबों पर, और सब पर ईमान लाना है, अमल कुरान पे करना है। और कुरान पर ईमान लाने का मतलब यह है कि सूरत अल फातिहा से लेकर अन्नास तक जो है अल्लाह ताला ने जो अहकाम दी है उस पर अमल करना है। ईमान लाने का ये मतलब नहीं है कि बस तिलावत कर ली जब रमजान का महीना आया, या फिर ये कि बच्चों को एक दफा नाजरा पढ़ाकर फारिग कर दिया, या ये कि जब कोई डेथ हो गई तो अब राहदारी के पारे पढ़ने हैं, या ये कि नया घर बना लिया तो अब जो है ना कुरान खानी हम कर लें, बल्कि क्या है कि कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना है। कुरान में हो गौता जन ए मर्द मुसलमान, कुरान में हो गौता जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जुर्रत किरदार। व रसूल ही और उसके रसूलों पर, अब तमाम पैगम्बरों पर ईमान लाना है कि ये अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह के एम्बेसिडर हैं, अल्लाह ने इनको अपना पैगाम पहुंचाने के लिए चुन लिया। लेकिन अतात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करनी है, किसी फिल्मी एक्टर की नहीं करनी, किसी खिलाड़ी की नहीं करनी, दुनिया में किसी मॉडलिंग करने वाली औरत या मर्द की नहीं करनी। आमतौर पे क्या है कि लेडी डियाना की मुस्कुराहट और इमरान खान खिलाड़ी जो है, मतलब या ये कि फलां जो जैकेट थी ना वो फलां ने पहनी थी, वो नेम ब्रांड है, या फलां कपड़े जो है वो नेम ब्रांड है, या हेयर स्टाइल अब ये चल रहा है, या ये कि शलवार जो है वो अब औरतों की भी जो है वो टखनों से बहुत ऊपर हो गई है, क्योंकि अब जो है ना फलां फिल्मी एक्टर ने उसको ऐसे पहना था, या फिर ये कि कमरे की सेटिंग जो है ना ऐसी करनी है क्योंकि फलां फिल्म के अंदर जो है ना मैंने कमरे की ये सेटिंग जो थी वो देखी थी। तो असल में हमारा रोल मॉडल कौन है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो है आपकी अजवाजे मोहतारात। तो दिल की गहराइयों से जो है ना इन पर ईमान लाना है। ला नुफर्रिकु बैन अहदिन मिन रुसुलिही, हम अल्लाह के रसूलों को एक दूसरे से अलग नहीं करते, हम इनमें कोई फर्क नहीं करते कि सब अल्लाह के रसूल हैं, हम सब पर ईमान लाते हैं, सब रसूलों की जो है वो इज्जत करते हैं, ये सब जो है वो एक ही सिलसिले की कड़ी है। जैसे यहूदो नसारा जो थे वो किसी को मानते थे किसी को नहीं मानते थे, लेकिन मुसलमान क्या करते हैं, वो सब पर ईमान लाते हैं। अब क्या कहा कि जब वो आयत नंबर 284 जो थी नाजिल हुई और सहाबा बहुत घबराए कि हम क्या करें, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि ए मेरे सहाबा, तुम जो है ये कहो समेना व अपाना, कि तुम यही कहो कि समेना व अपाना, कि अल्लाह हमने दिल की गहराइयों से कबूल कर लिया, व अपाना हम अमली अतात करेंगे। अब आप देखें कि समा और तात इसके मानी क्या है, के अल्लाह तेरा हुक्म सर आंखों पर, के अल्लाह जो तूने कहा मैंने सुना और मैं इसकी अतात के लिए जो है ना तैयार हूं, मैं दिल से कबूल करती हूं। तो ये है ईमान और इस्लाम की हकीकत, जो कि सहाबा का स्लोगन था, सहाबा का नारा था, ये उनका अमल था। वो आप सोचें कि वो आयतें नाजिल होती थी तो अमल करते थे, वो अमल करते थे तो कुरान की आयतें नाजिल हो जाती थी, कुरान उस पर गवाही देता था। समीना व अताना गुफराना का रब्बना व इलैकल मसीर, ये बहुत अहम बात है कि एक तरफ जो है ऐलान किया समीना व अताना, ये अल्लाह हमने सुना और हमने अताअत की, और दूसरी तरफ गुफरानक जो है वो, अब आप देखें कि गुफरान غفران کا لفظ جو ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے، جیسے الرحمن، اسی طرح غفران، بہت زیادہ معاف کرنے والا، بخشنے والا. تو اب آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ ایک طرف جو ہے زبان پر یہ کلمہ جاری ہوا کہ سمعنا و اطعنا، اور یہ اقرار ایک عظیم ذمہ داری کا اقرار ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جیسے اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب یہ کلمہ پڑھ لیا تو یہ چیز کا اقرار ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، آپ جو احکامات دیں گے میں اس پہ عمل کروں گی، اور اس کے ساتھ ہی محمد اللہ کے رسول ہیں. اس کے معنی کیا ہے کہ اے میرے اللہ، جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اطاعت کر کے دکھائی، تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے. ہم کیسے کریں گے، ہم کیسے جیئیں گے؟ جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. جو رکے تو کوہے گرا تھے ہم، جو چلے تو جہاں سے گزر گئے. رہے یار ہم نے قدم قدم، تجھے یادگار بنا دیا. تو یاد رکھیں کہ ایمان کی زندگی آزمائش کی زندگی ہے. جو شخص بھی سمعنا و اطعنا کہتا ہے، جو ایمان لاتا ہے، تو اس کو اس راستے میں بڑی بڑی آزمائشیں پھر پیش آنی ہیں. ہر قدم پر لغزشیں، کوتاہیاں اور ٹھوکروں کے اندیشے ہیں. ہر قدم پر جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر میں تمہیں آزماؤں گا. تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور مجھے آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ کو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے جو ہے وہ جھوٹے کون. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ غفرانک ربنا، کہ اے ہمارے رب، ہمیں تیری مغفرت چاہیے. اے اللہ، بھول چوک کر جو گناہ ہو جائیں تو تو ہمیں معاف کر دینا. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. یہ جو ہے کہ تیری طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی اس بات کا اقرار ہے کہ تیرے سوا کوئی نہیں کہ جہاں جا کر مجھے پناہ مل سکے. کیونکہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ فلاں رشتہ دار جو ہے وہ پناہ دے گا، یا فلاں شریک ہے، یا پھر فلاں جو ہے وہ بت ہے، یا فلاں جو ہے وہ سفارشی ہے، یا ابا اجداد، یا کوئی بھی. تو اصل بات کیا ہے کہ انسان جو ہے کیا کرے گا، کچھ بھی دنیا میں کرے اور کسی سے بھی چھپے، لیکن اللہ سے چھپ نہیں سکتا. کہاں جانا ہے؟ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اسے اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ لوٹنا ہے. اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم سب کو اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ آپ سوچے تو صحیح. تو وہ الیک المصیر کا جو کلمہ ہے نا، یہ اصل میں کامل سپردگی ہے. جیسے ایک بچہ نہیں ہوتا، اپنی ماں کی گود میں سر دے دیتا ہے کہ اللہ تو، وہ کہتا ہے کہ اے ماں تو میری ماں ہے نا، یا باپ ناراض ہے یا والدہ ناراض ہے تو کہتا ہے کہ بس اب تیرا گھر چھوڑ کر یا تجھے چھوڑ کر میں اور کہاں جا سکتا ہوں نا، تو بھلے تو مجھے ناراض ہو، تو مجھے جو ہے وہ پیچھے ہٹائے یا کچھ بھی کرے. تو اسی طرح یا وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سکھائی کہ پوری طرح نیکیوں کی اور عمل کی کوشش کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت استغفار کرتے تھے. آپ کہتے تھے کہ میں دن میں 70-70 بار استغفار کرتا ہوں، میں 100-100 بار استغفار کرتا ہوں. اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا جو استغفار ہے وہ ہمیں یاد کرنا چاہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس میں جو ہے یونس علیہ السلام نے جو ہے آپ سوچیں کہ سمندر کی اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ میں، اور رات کے اندھیرے میں، یعنی تین تین اندھیروں میں جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی غلطی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کو جو ہے وہ معاف کر دیا. تو یہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، یہ استغفار جو ہے یہ بہت ہی جو ہے مقبول استغفار ہے، اور یہ جو ہے وہ ہمیں بھی مانگنا چاہیے. پھر دوسرا استغفار جو ہے وہ سید الاستغفار، اسے بھی جو ہے وہ مانگنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کو جو ہے وہ تمام استغفار کا جو ہے وہ سردار کہا. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني, تو آپ یہ استغفار جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ یاد کریں. جو کتاب ہے فذکرونی اس کے اندر بھی ہے, اگر آپ کے پاس کوئی اور کتاب ہے دعاؤں کی آپ اس میں سے بھی لے کر جو ہے اس کو یاد کر سکتی ہیں. بہرحال استغفار جو ہے اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے. اب دیکھیں کہ یہ جو آیت نمبر 284 تھی جس کے نازل ہونے پر صحابہ بڑے پریشان ہوئے, لیکن جب انہوں نے سمعنا واطعنا کہا تو اللہ رب العزت نے ان کے اس جذبے کو دیکھتے ہوئے پھر یہ آیت نازل کر دی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ کسی نفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. اس کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان اور صحابہ جو پریشان تھے کہ ہم نے کہہ دیا سمعنا واطعنا, تو ہمارے سے اگر اللہ کی اطاعت میں کمی بیشی ہو جائے گی تو پھر کیا بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اللہ جو ہے کسی نفس اور اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. اس سے کیا بات پتا چلتی ہے؟ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں تو اسلام پہ عمل نہیں کر سکتی اور اس کے احکامات تو بڑے مشکل ہیں, اور میری ننی سی جان, اور پھر میں عورت, اور میرے لیے تو بڑا مشکل ہے, اور پھر امریکہ میں رہتے ہوئے, اور پھر کینیڈا, اور پھر میں تو ڈاکٹر بھی ہوں, اور مجھے تو بینک میں جاب کرنی ہوتی ہے, اور میں مجھے جو ہے ہاسپٹل میں لیبورٹری میں کرنی ہے, یا یہ کہ میں یہاں کے پبلک اسکول میں جاتی ہوں, یونیورسٹی میں جاتی ہوں, کیسے کروں عمل, نماز کیسے پڑھوں, یہاں پہ رہتے ہوئے مورگی سے کیسے بچوں, یہاں پہ رہتے ہوئے جو ہے وہ جلباب حجاب ان سب کا کیسے خیال رکھوں, اور پھر یہ کہ میں جو ہوں وہ کس طرح جو ہے وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروں, یا یہ کہ شوہر کی اطاعت کیسے کروں, یا یہ کہ رشتہ دار جو ہے وہ میں ان کو کتنا راضی کرنا چاہتی ہوں, بس وہ تو ناراض ہی ہوتے رہتے ہیں. میں جتنا ان کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہوں نا اتنا ہی وہ سر پہ چڑھتے جاتے ہیں. اچھا پھر ان کو جو ہے نا چھوڑ ہی دیا جائے, ان سے بات ہی نہ کی جائے, بس پھر ان سے جو ہے نا صرف نظر کر لیا جائے, تو میں نہیں ان کو راضی کر سکتی, بڑا مشکل ہے میرے لیے. تو آپ دیکھیں کہ یہ آیت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص سے جو ہے وہی عمل چاہتا ہے جو وہ کر سکتا ہے, اللہ کسی شخص سے وہ عمل نہیں چاہتا جو وہ کر ہی نہیں سکتا. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ کسی متنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. یکلف کا مطلب تو آپ کو آتا ہی ہے نا, کاف لام فا, اور جیسے تکلیف یا کسی کو مکلف بنا دینا, اس کو ذمہ دار ٹھہرانا. لہا ما کسبت و علیہ ما اکتسبت, ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے. تو لہا ما کسبت, جو اس نے نیکی کمائی, تو کسب جو ہے یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ کمائی کے لیے, خوش نصیبی کے لیے, کوئی اچھا کام کرنے کے لیے. ویسے کسب کا لفظ حلال حرام دونوں کے لیے آتا ہے, اچھا کام اور برا کام کے لیے بھی, لیکن یہاں پر جو ہے یہ اچھے کام کے لیے آیا ہے. وہ علیہا, تو وہ اسی وہی فائدہ اٹھائے گا. پھر فرمایا وہ علیہا مکتسبت, اور اسی پر ہے جو کہ اس نے اکتساب کیا. اکتساب کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے برے عمل کے لیے, کہ جس میں انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے. یہ وہی بات ہے کہ جو بوئے گا وہی کاٹے گا, جو کرے گا وہی بھرے گا. تو دوسرے کے نیک عمال کا کریڈٹ کسی اور کو ملنے والا نہیں ہے. جیسے کوئی گندم بوئے تو گندم بو کر جو ہے وہ چنے نہیں کاٹ سکتا, کوئی کانٹے بو کر جو ہے وہ پھول اور پھل نہیں کاٹ سکتا. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو کرے گا وہی بھرے گا. کل نفس بما کسبت رہینا, لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت. کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں سفارش کر دے گا, فلاں کام آ جائے گا, اور جو ہے وہ کوئی گریس مارکس کہیں سے ملی جائیں گے, لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو اپنے عملوں کا خود ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہرایا ہے. دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ والدین کی کمائی ہوئی دولت ہی بچے بیٹھ کر کھا رہے ہیں, یا اپنے ابا اجداد کی, یا یہ کہ ایک نے گناہ کیا ہے دوسرا اس کے گناہ میں پکڑا جاتا ہے, بیٹے نے قتل کیا باپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. اور پھر آگے آخری آیت جو ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں, اس کا جو حصہ اب ہم پڑھنے لگے ہیں, یہ سارا حصہ جو ہے نا یہ دعائیہ ہے, اور اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے دعا سکھائی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, کہ ہمارے رب لا تؤاخذنا, تو ہمیں نہ پکڑنا, لا تؤاخذنا, تو ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا. अब आप देखें कि हमजा खा जाल इसके मानी होते हैं जो पकड़ के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, जैसे अखज कर लेना, पकड़ लेना। तो ला तो आखिजना, तू ना हमें पकड़ना, कब? इन नसीना, जब हमसे भूल हो जाए। तो नसीना जो है नसिया, नसिया जो है इसका मतलब होता है भूल चूक, कि ये जो समा और अतात का वादा कर लिया, जो कलमा पढ़ लिया, जो हम हर नमाज के हर रकत में कहते हैं इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, तो ऐ मेरे अल्लाह तेरी अतात में और तेरे अहकामात के सुनने में ये जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, अगर मुझसे कुछ भूल हो जाए, कुछ कमी हो जाए, तो तू मुझे जो है ना वो माफ कर देना, तू मुझको ना पकड़ना। और वो अख्ताना, और अख्ताना जो है ये खा तो हमजा, इसके मानी होते हैं अपनी ना समझी से किसी काम को गलत तौर पर कर बैठना। तो खता होता है ना, जैसे आप कहीं निशाना भी लगा रहे हैं तो फिर जो है आप कहते हैं कि निशाना मेरा जो है वो खता हो गया, मेरा निशाना जो है वो गलत जगह पर जो है वो लग गया। तो यहां पर जो है वो बताया जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो है वो माफी मांगी जाए कि ऐ मेरे अल्लाह के अगर मुझसे जो है वो भूल कर या जान बूझ कर जो भी मुझसे जो है वो खता हो जाती है, गलती हो जाती है, तो ऐ अल्लाह तू मुझे उस पर ना पकड़ना। ला तो आखिजना इन नसीना और वख्ताना, बड़ी खूबसूरत दुआ है। और जब इंसान एक तरफ हुस्न अमल करने की कोशिश करता है और उसके साथ ही उसका दिल हर वक्त ये डरता रहता है और वो हर वक्त खशियत में रहता है और हर वक्त एहसास रखता है, अस्तगफार करता है, परेशान होता है कि अल्लाह तू मेरी गलतियों को माफ कर देना, और साथ ही कहता है रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहू अलल लजीन मिन कब्लिना, ए हमारे रब वला तहमिल अलैना, कि तू हम पर ना डाल। तहमिल हमल से है, हा मीम लाम, अगर हा के ऊपर जबर होगी ना, फतह होगी, इसका मतलब होता है पेट के अंदर बोझ उठाना। हमल जैसे प्रेग्नेंट औरत जो होती है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हा के नीचे जेर आ जाए हिम्ल, तो इसके मतलब होता है कि उठाने वाले की इस्तेतात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा मादी बोझ उठाना। जैसे अब गधा है तो उस पर बहुत सा सामान लाद दिया जाए, जितना गधा उठा सकता है, तो उसको हिम्ल कहते हैं, वो जो नजर आ रहा होता है ना, लेकिन वो जो पेट के अंदर है तो उसके लिए हमल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो कहा रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन, के मेरे रब तू हम पर वो बोझ ना डालना। इसर का लफ्ज जो है ये बोझ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमजा स्वाद रा, गिरा लगाना, किसी चीज को जबरदस्ती रोक लेना, अहद के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो हम पर वो बोझ ना डाल, कमा हमलतहु अललजीना मिन कब्लिना, जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। अब आप देखें कि पहले जो लोग थे वो सख्त आजमाए गए। अब सहाबाए कराम और सहाबियात ही की आप जो है वो आजमाइश को देख लें, फिर आप देखेंगे पिछली उम्मतों को देखें कि वो कितने सख्त आजमाए गए, कि जैसे बछड़े की पूजा करने वालों की तौबा जो थी वो कबूल नहीं हो सकती थी जब तक के जिन्होंने पूजा की थी उन्हें कत्ल ना कर दिया जाए। आप पीछे सूरत अल बकरा में ये पढ़ चुकी हैं। तो ये क्या था, ये सख्त किस्म के शरीय अहकाम थे। नंबर दो, यहूद में सिर्फ किसास था, दियत या माफी नहीं थी। किसास क्या है कि अगर वो किसी ने कत्ल किया तो बदले में वो कत्ल ही किया जाएगा, कातिल कत्ल किया जाएगा। दियत का मतलब क्या है, इस्लाम में दियत कितनी है, 100 ऊंट। अब ये नहीं हो सकता कि वो 100 ऊंट दे के जो है ना उसको जो है वो छूट जाए, फिर माफी भी नहीं थी। तो हमारे यहाँ दियत भी है अगर कोई दियत लेना चाहे, या फिर माफी भी है कि अगर कोई माफ ही कर दे, लेकिन उनके यहाँ किसास था। तीसरी चीज जो है, हमारे यहाँ जकात कितनी होती है, 100 पे 2.5% और उनके यहाँ चौथा हिस्सा थी, कितनी ज्यादा थी। अब आप देखें कि 2.5% भी लोगों को देना मुश्किल लगता है। फिर चौथी बात थी कि कपड़े पे अगर पेशाब लग जाता तो वो काटना पड़ता था, धोकर नहीं पाक होता था। हमारे यहाँ पानी जो है वो तोहर है, पाक है, और उससे जो है वो मुतहर है और चीज जो है पाक हो जाती है। पांचवी चीज ये थी कि उन पर माल गनीमत जो था वो हराम था और मुसलमानों के लिए ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ मांगी जा रही है कि अल्लाह तुम मुझ पर वो बोझ ना डालना जो तूने हम में से पहले लोगों पर जो थे वो डाले थे। इसके ये मतलब भी है, जैसे आप देखती हैं कि मेरी दूसरी कोई बहन है वो सख्त बीमारी में मुब्तिला है, तो अल्लाह तू मुझ पर ये बोझ ना डालना, या ये कि किसी को मुआशी लिहाज से सख्त मसला है, या किसी के बच्चे बड़े सख्त नाफरमान हैं, या फिर ये कि किसी के घर में जो है वो हर वक्त लड़ाई होती रहती है, या किसी के घर में जो है वो जैसे बाज घरों में औरतें बहुत लड़ाई लड़ाई करती हैं, गुस्से वाली हैं, बाज में शोहर बहुत गुस्से वाले हैं, है ना। दो 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 बहनें ही अपना आपस में तजिया करें तो अंदाजा होता है इस बात का। फिर इसी तरह जो है वो बाज लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो जितने वो नेक हैं, जितने मुत्तकी हैं, उतनी सख्त जो है वो आजमाइश में डाला है। तो अब जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया कराम पर सबसे सख्त जो है वो आजमाइशें आई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया कि सबसे सख्त आजमाइशें जो है ना वो अंबिया पर आई, कि हर शख्स ना अपने ईमान के मुताबिक जो है वो आजमाया जाता है। तो तुम में से जो शख्स जो है ईमान के लिहाज से जितना ज्यादा ऊंचे दर्जे पर होता है, अच्छे दर्जे पर होता है, उसी एतबार से अल्लाह जो है ना उसकी आजमाइश करता है। तो बड़ी सख्त सख्त आजमाइशें, बड़ी बड़ी आजमाइशें कि आप उनके बारे में सुने कि दूसरा ऐसे सख्त आजमाइश में है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ऐसे मौके पर उस पे हंसना नहीं चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और उस पर कोई तबसरा भी नहीं करना चाहिए कि ये अच्छे तरीके से अमल नहीं करती, या ये ऐसे करती है, या फलां ऐसा करता है। बाज लोगों के बच्चे अगर अच्छे नहीं है तो जिनके बच्चे अच्छे हैं वो अंदाजा नहीं कर सकते कि उन्होंने अपने दूसरों ने अपने बच्चों की तरबियत के लिए कितनी अच्छी कोशिश की थी। अगर बच्चे फिर भी किस्मत से अच्छे नहीं निकलते, जैसे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जो था वो अच्छा नहीं निकला, तो जिनके बच्चे अच्छे होते हैं तो कहते हैं देखा हमने कितनी अच्छी तरबियत की थी ना, इन्होंने तो कोई अच्छी तरबियत नहीं की। या बातें करते हैं, या दिल लगी करते हैं, या हंसी करते हैं। अल्लाह से डरना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह जो है ना कोई आजमाइश जो है वो आप या किसी के सामने जो है वो लाकर रख दे। और बाज लोग कहते हैं कि अपने अपने आप को क्रेडिट देते हैं ना, या तो अपने आप को क्रेडिट नहीं देना चाहिए कि मालिक हम पर वो बोझ ना डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर जो थे वो डाले थे। बहुत सी बातों में आप इसको जो है वो लेके जा सकती हैं। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना बे, परवरदिगार जिस बार को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर ना रख, कि तू हम पे जो है वो मुश्किलात का वो बोझ ना डाल जो हम सहार ना सकें, बस उतनी ही आजमाइश भेज जिसमें हम पूरे उतर आए। ऐसा ना हो कि हमारी कुव्वते बर्दाश्त से बढ़कर जो है वो सख्तियां हम पर नाजिल हो और हमारे कदम जो है वो राह हक से जो है वो डगमगा जाएं। अब देखें कि मौजूदा दौर के लिहाज से कैसे मैं अपने आप को हराम से बचा सकती हूँ, और हर तरफ हराम खूबसूरत बनकर जो है वो सामने नजर आता है, कभी क्रेडिट कार्ड की शक्ल में, कभी BMW, कभी बड़ा खूबसूरत घर है, और कभी जो है वो मुख्तलिफ तरीके से ऑफर जो है वो होती हैं। इसी तरह बेहयाई जो है वो खूबसूरत बनकर सामने आती है, तो निगाहों की हिफाजत करना, फिर इसी तरह अपने दिल की ईमान की हिफाजत करना, अपनी जबान की हिफाजत करना, और जबान जो है ये भी फिसल जाती है, कदम फिसल जाते हैं, आंखें इधर उधर हो जाती हैं। और तुम में से जो कोई ये चाहता है कि अल्लाह उसकी इबादत में लज्जत पैदा कर दे, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे चाहिए कि अपनी आंखों की हिफाजत करे। तो परवरदिकार जिस बार को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर ना रख। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताकत लना बिह, बसन मैं यही सोचती हूँ जैसे ये क्लास ही शुरू हो गई है, और मुझे तो ये क्लास जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है। अक्सर लोग कहते हैं कि जब आप इतने सालों से, कई सालों से, जैसे जो है वो आप सोचे कि 80 से पढ़ाना शुरू किया, 1980 यानी इस अरसे से पढ़ाना शुरू किया, और अब ये जमाना कई साल हो गए, और यानी आपको जो है वो पढ़ाना कोई मुश्किल नहीं है ना। लेकिन असल बात क्या है कि पढ़ाने की बात नहीं है कि कितना आपको आता है, असल बात यह है कि इल्म से बढ़कर अपने अमल की फिक्र है। और फिर दूसरी बात जिसकी हम सबको फिक्र करनी चाहिए, मसलन यही कि देखिए आपने पूरी तैयारी भी की, पेल टॉक के लिए अगर चल रहा, आपका माइक काम नहीं कर रहा, आपका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, कोई भी, अब पिछली क्लास में ये सारा सबक मैंने पढ़ा दिया था लेकिन जो है वो मुझे नहीं पता था आप लोगों को आवाज नहीं आई, है ना। तो बाज औकात क्या होता है, आपने खाना पकाया, खाना जल गया, आपने बड़ी मेहनत से पकाया था, तो आप क्या करते हैं, आप जब जला उठते हैं आप गुस्से में आ जाते हैं, आपने कपड़े सीने शुरू किए, आपने गलत काट लिए, आप गाड़ी चला रही थी, आप लेने जा रही थी, खुदा ना खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है ना। इसी तरह खुदा ना खास्ता जो है शादी हुई और फिर किसी वजह से जो है खुदा ना खासा वो कामयाब नहीं होती। बहुत सी बातें ना, भाई की हो सकती है, बहन की हो सकती है, बेटी की हो सकती है, बेटे की हो सकती है, कोई भी किसी भी तरह से वो कोई भी आजमाइश हो सकती है। अल्लाह ताला से बार बार ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तू हम पर वो बोझ ना डाल जिन पे उठाने की हमें ताकत नहीं है। और इस सिलसिले में एक बात और याद रखनी चाहिए, वो बहुत अहम बात है, और अल्लाह से बहुत कसरत से ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह, जैसे बाज़ूकात आपको अपनी जिंदगी में यूं महसूस होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, मैं ज़कात देती हूँ, मैं हुकूक़ुल इबाद अदा करती हूँ, मैं सबको साथ अच्छा मामला रखती हूँ, लेकिन इस बात की फिक्र करते रहना चाहिए कि अल्लाह मुझे जब मौत आए ना तो ईमान की हालत में आए। ऐसा ना हो कि मेरा दिल जो है ना किसी वक्त ऐसा हो कि फिर वो नेकियों से हट जाए, क्योंकि इंसान का दिल जो है ना रहमान की दो उंगलियों के दरमियान है, वो जिधर चाहे उसको फेर दे। तो अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए, रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना वा हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, के अल्लाह जो है वो मेरे दिल को जो है वो कभी जो है वो जंग ना लगने पाए, मेरे दिल को कभी हदायत से गुमराही की तरफ फेर ना देना। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनका आखिरी वक्त आया और आखिरी जैसे सांसें ले रहे थे, उनकी मौत का वक्त करीब था, और उस वक्त जो है ना वो जोर जोर से कहने लगे, ला बौदा ला बौदा, अभी नहीं अभी नहीं। उनके बेटे ने कहा कि अब्बा जान क्या बात है क्या बात है, कहने लगे कि अभी इबलीस मेरे सामने आया और कहने लगा क्या अहमद बिन हम्बल तुम तो बख्शे हुए हो, तुम तो कितने नेक हो, क्या अच्छे तुमने अमल किए। तो इमाम अहमद बिन हम्बल रोने लगे, कहने लगे अभी नहीं अभी नहीं, अभी मेरी सांसें बाकी हैं, यानी अभी मैं दुनिया से गया नहीं। क्योंकि अगर वो उस वक्त जो है वो गुरूर और फखर में मुब्तिला हो जाते कि हाँ हाँ मैंने बड़ा अच्छा अमल किया, तो सारा किया कराया जो है जाया हो जाता। तो कहने लगे अभी नहीं, क्योंकि अभी तक मैं अमल के मैदान में हूं। तो ये है असल इम्तहान कि ऐ परवरदिगार, जिस बार को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर ना रख, वाफ़ुन ना, और हमारे साथ नरमी कर। अब आप देखिए कि यहाँ पर पहली बात जो आई है वो ये है कि एला तू हमें माफ कर दे। और आप सोचें कि जब बंदा पूरी कोशिश करने के बाद अल्लाह से माफी जो है उसका तलबगार होता है, तो अल्लाह की रहमत तो जोश में आती है ना। अल्लाह की माफी की बारिश सुबह शाम होती है, दिन रात होती है। हर सुबह अल्लाह अपना दामन फैलाता है कि रात की तारीकी में गुनाह करने वाले पलट आके मैं तुझे बख्श दूं, और हर जो है वो शाम अल्लाह जो है अपना हाथ फैलाता है कि दिन के उजाले में गुनाह करने वाले पलट आ कि मैं तुझे बख्श दूं। तो हमें जो है ना कसरत से अल्लाह ताला से ये दरखास्त जो है वो करनी चाहिए कि वाफ़ुअन्ना, के अल्लाह तुम हम सबको माफ कर दे। क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे कि अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाब यसीरा। तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ने पूछा कि आप भी, तो आपने फरमाया कि आयशा जो पूछ जिसकी पूछ गिछ हुई वो तो मारा गया। तो अल्लाह जो है वो माफ कर दे तभी मामला जो है वो बनता है। और दूसरी बात वग़फिर लना, और वक्त लेना का मतलब क्या है कि अल्लाह बस तू ढांप ले, तू बस छुपा ले। आप सोचें कि पूरी जिंदगी जो है ऐसे लगता है कि गुनाहों से स्याह है, गुनाहों की गठरियां हैं जो कंधों पे लाद रखी हैं, पीठ पीठ गुनाहों के बोझ से जो है वो बोरी हो चुकी है, और दरख्तों पर कितने पत्ते हैं। और आप सोचें कि जो है ये जैसे कि नाफरमानियों के पत्ते हैं, गुनाहों के पत्ते हैं, आइए अस्तगफार करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे, और गुनाहों ये जो जितने पत्ते हैं ना ये जर्द होकर जो है ना वो गिर पड़े। और कैसे गिरेंगे, जब अस्तगफार की हवा चलेगी, जब तौबा की जाएगी, जब अल्लाह से माफी की मांगी जाएगी, तो फिर एक ही झोंके से जो है ये सारे पत्ते जो है वो गिर जाएंगे। फिर बहार आएगी, और बहार क्या हुआ, रहमना, कि अल्लाह तू हम पर रहम कर। और अल्लाह का रहम क्या है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करने के बाद जो है ना बस हमें अपनी रहमत से जो है ना वो ढांप ले। और अल्लाह की रहमत क्या है कि अल्लाह हम सबको बख्श दे, हमारी माफी का ऐलान कर दे, और हमसे राजी हो जाए, और हमें अपने उन खुशकिस्मत लोगों में शामिल कर ले जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تو اللہ ہمیں بھی نفس مطمئنہ میں شامل کر دے. تو یہ تین درخواستیں ہیں اور اکٹھی تینوں آئی ہیں، نمبر ایک عف، نمبر دو مغفرت، اور نمبر تین جو ہے وہ رحم. تو عف کے معنی کیا ہے کہ چشم پوشی کرنا، نظر انداز کرنا، اور غفرہ کے معنی کیا ہے کہ اگر کوئی غلطیاں ہو بھی گئی ہیں تو ان کو کور کر لینا. مغفرہ جو ہے نا ٹوپی کو کہتے ہیں، مغفرہ ٹوپی. اب دیکھیں ٹوپی کو سر پہ رکھا جاتا ہے، سارے کالے بال چھپ جاتے ہیں نا، تو جب اللہ کی مغفرت ہمیں ڈھانپے گی تو کیا ہے کہ سارے گناہ جو ہے نا چھپ جائے، ختم. اور تیسری چیز پھر جو یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنی رحمت میں جو ہے وہ بس سمیٹ لے. تو آخرت کا سہارا نا بس یہ تین چیزیں ہیں. اور پھر یہ اتنی اچھی بات ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین، انت مولانا، بس آپ ہی ہمارے مولا ہیں. مولا جو ہے ولی دوست کے لیے آتا ہے، اور مولا کا لفظ مرجے کے معنی میں دیتا ہے کہ جس میں مشکلات میں رجوع کیا جائے. ایسا دوست، ایسا ولی، ایسا گہرا دوست کہ مشکل وقت میں اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا جائے. تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ جب مصیبت ہو، جب پریشانی ہو، جب غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، سخت آزمائش ہے، جسمانی ہے، مالی ہے، اولاد کی آزمائش ہے، بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا، بچے راہ راست پر نہیں ہیں، یا کسی لحاظ سے بھی گھر میں جھگڑا ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، تو اللہ سے یہ دعا مانگے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین، کہ اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، آپ ہماری نصرت کیجئے، مدد کیجئے. نصرہ کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنا، تعاون کرنا. تو اے اللہ آپ ہماری مدد کیجئے، علی القوم الكافرین، جو ہمارے جانی دشمن ہیں نا ان کے خلاف. جیسے آج کے دور میں بھی آج کے مسلمان جو کہ مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، کہیں کچھ ہوتا ہے تو انگلیاں مسلمانوں پر اٹھتی ہیں، کوئی کہیں پریشانی کی بات ہوتی ہے تو مسلمان جو ہیں وہ پریشان ہیں. آپ دیکھیں جاب سے جو ہے وہ لے کیا ہوا ہے، ان کو لے آف ہیں، اور بھی مطلب ہر طرف غم کے بادل جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتے، مسلمان کبھی گرتے نہیں ہیں اور دبک کر بیٹھتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے، بلکہ اللہ سے معافی کی درخواست کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ سے تعاون اور مدد کی جو ہے وہ درخواست کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے سفر کو جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں. نہ خدا سے لے کے کشتی جب خدا پہ چھوڑ دی، نہ خدا سے لے کے کشتی جب خدا پہ چھوڑ دی، خود ہی موجیں لے چلی کشتی کو ساحل کی طرف. آئیے دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. और हमारे रब, हम आपसे वही दुआ मांगते हैं जो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने मांगी थी. हम अपनी औलाद के लिए आपसे वही दुआ मांगते हैं. वह इन्नी उईज़ुहा बिक व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम. इन्नी उईज़ुहा बिक व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب العزت, ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے گئے, اے اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. یا رب العزت, ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. یا رب العزت, تو ان کے سارے گناہ معاف کر دے. انسان ہونے کے ناطے عملی زندگی میں, دنیا کی زندگی میں ان سے جو کمی بیشی ہوئی تو انہیں معاف کر دے. یا اللہ, ہماری ساس اور سسر کو بھی, اور اے اللہ ہمارے والدین کو بھی, اے اللہ ہمارے شوہروں کے والدین کو بھی, اور اے اللہ ہمارے اپنے والدین کو بھی. یا رب العزت, تو سب کی مغفرت کر دے. ہمارے والدین اور ہمارے شوہروں کے والدین میں سے جن کے دنیا میں زندہ ہیں, موجود ہیں, اللہ تو ان کے بڑھاپے کو آسان کر دے. اے اللہ, تو ان کی بیماریوں کو ختم کر دے. یا اللہ, تو ان کی تنہائیوں کا وارث بن جا. اے اللہ, تو ان کو صحت کاملہ عطا کر دے. اے اللہ, تو ان کی بیماریوں میں شفا دے دے. اور یا رب العزت, جتنے دن زندگی کے دنیا کے ان کے باقی ہیں, اللہ تو ان کے لیے آسانی کر دے. یا رب العزت, ان کے لیے آسانی کر دے. تو اولاد کو ان کے آگے جھکنے والا, ان کی خدمت کرنے والا, ان سے محبت کرنے والا, ان کی اطاعت کرنے والا, اور ان سے جو ہے وہ احسان کے درجے کی نیکی کرنے والا بنا دے. اور یا اللہ, تو ہمیں ایسی ہی اولاد بنا جو اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں. اور اے اللہ, تو ہم سب کو اپنا اطاعت گزار بنا لے. اے اللہ, یہ تیری دنیا بڑی خوبصورت ہے. تو نے دنیا بنائی, بڑی خوبصورت بنائی. قدم قدم پر جو ہے وہ آزمائشیں ہیں, گناہ ہیں, اور جو ہے وہ کانٹے ہیں. اے اللہ, تو ہمارے قدموں کو ایمان پر ثابت قدم رکھ. تو ہمیں عمل صالح کے ثابت قدم رکھ. اور اے اللہ, غصہ جو حرام ہے, تو ہم سب کو غصے سے بچا لے. تو ہم سب کو اپنے غصے پر جو ہے وہ قابو کرنے والا بنا. اور اے اللہ, تو ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنا. غیبت حرام ہے, جھوٹ حرام ہے, بدگمانی حرام ہے. اور اے اللہ, وہ تمام چیزیں جو کہ حرام ہیں, اور اے اللہ, تو ہمیں ان سے بچنے والا بنا. تیرا پیارا کلام سنا بہت دنوں سے سن رہے ہیں. اے اللہ, تو ہمارے دلوں کو نرم کر دے. یا رب العزت, تو ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا. یا اللہ, ہم کمزور ہیں, اور اے اللہ, تو ہمیں ایمان سے مضبوط کر دے. یا اللہ, تو ہمارے گھروں پر اپنی رحمتیں نازل کر. تو ہمارے گھروں کو اسلام کا قلعہ بنا دے. یا رب العزت, تو ہمیں اور ہمارے شوہروں میں محبت دے دے. الله اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا يا رحيم يا رحمن يا الله يا خالق يا مالك يا الله يا رحيم يا غفور يا الله اغفر لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا يا الله. आज जो फैमिली सिस्टम जो है वो स्कैटर्ड हो गया, टूट रहा है, अल्लाह तू हमारे घरों पर अपनी रहमतें नाजिल कर। ए अल्लाह तू हमें बड़ों से इज्जत करने वाला, छोटों से प्यार करने वाला बना। या अल्लाह तू हमें बहसियत मियां बीवी के आपस में एक दूसरे की इज्जत करने वाला और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना। या अल्लाह हम बहसियत औरत के उन तमाम हकूक पे राजी हैं जो तूने बहसियत एक मुसलमान औरत के हमें दिए, बहसियत एक माँ के, बेटी के और बहन के। और अल्लाह हम तेरे फैसलों पे राजी हैं, अल्लाह तू हमारा मालिक है। और अल्लाह तू हमें बीबी आसिया की तरह जो है वो दुनिया में रहते हुए जन्नत में महल बनाने वाला बना। रब इब्ने ली इंदक बैतन फिल जन्ना। और अल्लाह फ्री ऑफ मॉर्गेज, मॉर्गेज से पाक घर हमें तुझसे चाहिए, दुनिया में भी चाहिए और जन्नत में भी चाहिए। और अल्लाह तू हलाल जराए हमारे लिए जो है वो फराहम कर दे। और अल्लाह तू हमें हलाल पर कनात दे दे, तू हमें अपनी अतात पर राजी कर दे। और अल्लाह तू हमारे माथे के बालों से पकड़ पकड़ कर हमें सिराते मुस्तकीम पर चला। और अल्लाह तू हमारी औलाद को हमारे लिए आजमाइश ना बनाना। और अल्लाह तू हमारी आजमाइश को, हमारी औलाद को हमारे लिए सदका जारिया बना दे। और अल्लाह तू हमारी औलाद को हमारे लिए आजमाइश ना बनाना। हमारी औलाद, हमारी औलादों की औलाद जो है अल्लाह, हमारी नस्लें उनमें नेकी लिख दे, उनमें जो है वो जन्नत का शौक लिख दे। और अल्लाह तू उन्हें अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले। और अल्लाह वो तमाम बहनें जो हैं वो जो कुरान की इस क्लास में जो है वो दाखला जिन्होंने लिया, वह हर एक की नेक और जायज ख्वाहिश को कबूल कर ले। कोई बहन सख्त बीमार है और अल्लाह तू चाहे तो मिट्टी की चुटकी पर शिफा दे दे। तो जो बहनें भी बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह तो उनको सेहत कामला अता कर दे। वो बहनें जिनके जवान बेटियां बेटे घरों में हैं और अल्लाह वो रिश्तों के लिए परेशान हैं, अल्लाह तो उनको उनके उनके औलाद के लिए बेहतरीन नेक रिश्ते फराहम कर दे। और या रब्बुल इज्जत वो बहनें जिनके बच्चों की शादी हो रही है उनके बच्चों की शादी को कामयाब कर दे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जहीन कर दे, उनके वक्त में बरकत दे दे, उनको पीयर प्रेशर से बचा कर, शैतानी असरा से बचा कर, बुरे दोस्तों की सोबत से बचा कर। अल्लाह तो उनको जो है वो नेक बना दे। अल्लाह हमारा दिल, हमारे बच्चों का दिल तेरी दो उंगलियों में है। अल्लाह तू दिलों को फेर कर नेकी पर जमा कर दे, ईमान पर जमा कर दे। अल्लाह कल्बे सलीम दे दे, कल्बे मुनीब दे दे। अल्लाह मुस्लिम हनीफ बना दे, अना अव्वलुल मुस्लिमीन में शामिल कर दे। और अल्लाह ये क्लास जो हमने तेरे नाम के लिए, तेरी रजा के लिए, तुझे खुश करने के लिए, तेरे कुरान को समझने के लिए जो शुरू की है, और बड़ी मुश्किलात में और बड़े मसाइल में, और खास तौर पे शाम के वक्त जबकि घरों में बच्चे हैं, शोहर हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, और ये वो बहनें जो कि जॉब करती हैं और पढ़ना चाहती हैं, वो बहनें जो कॉलेज स्कूल जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं और पढ़ना चाहती हैं। और अल्लाह तो इस मुश्किल को, इस खूबसूरत सफर को, इन बहार के दिनों को, इस प्यारे सफर को तू हम सबके लिए आसान कर दे और इसको तू कबूल कर ले। और अल्लाह हमने सूरत अल फातिहा से लेकर यहाँ तक जो कुछ भी सुना आप इस पर हमें अमल करने वाला बना दीजिए, हर एक की नेक और जायज ख्वाहिश को कबूल कर लीजिए, और जो हमने मांगा वो भी हमें दे दे, और जो हम ना मांग सके और हमारे हक में बेहतर है या रब्बुल इज्जत तो हमें वो भी दे दे। और या रब्बुल इज्जत दारुल ईमान की मदद नेक और मुत्तकी लोगों से कर। और अल्लाह तू इसकी मदद नेक और मुत्तकी लोगों से कर। और अल्लाह तू हम लोगों से अपने दीन की खिदमत ले ले। तू चाहे तो अपने दीन की खिदमत अबाबील से ले ले, तू चाहे तो अपने घर की हिफाजत जो है वो चंद परिंदों से करवा ले। और अल्लाह जिन खुशकिस्मत लोगों से तू अपने दीन की खिदमत ले, तू हमें भी उन लोगों में शामिल कर ले, तू हमें भी उन लोगों में जो है वो चुन ले। और अल्लाह तू हम सबसे राजी हो जा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين ثم آمين.